नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 जनवरी से, पर्यावरण और प्रदूषण पर होगी विशेष चर्चा। दिल्ली सरकार आर्थिक रूप से कमजोर 6000 से अधिक परिवारों को अगले वर्ष तक मकान उपलब्ध कराएगी। दिल्ली सरकार ने दिल्ली विद्युत बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। दिल्ली में नए वर्ष पर सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रबंध किए गए। और राष्ट्रीय कैडेट कोर का गणतंत्र दिवस शिविर 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 जनवरी से शुरू होगा। सत्र के दौरान पर्यावरण और प्रदूषण पर विशेष चर्चा होगी। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि सरकार प्रदूषण के बारे में विस्तृत जानकारी, वैज्ञानिक रिपोर्ट और पिछले 20 वर्ष की व्यापक समीक्षा प्रस्तुत करेगी। इस बीच दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि आम आदमी पार्टी जनता के बीच लगातार झूठ और दुष्प्रचार फैला रही है। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री सूद ने कहा कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के द्वारा फैलाए जा रहे झूठ के झांसे में नहीं आएगी। एक रिपोर्ट।
श्री सूद ने कहा कि आप आदमी पार्टी के कुछ नेता बिना किसी प्रमाण के दावा कर रहे हैं कि दिल्ली के शिक्षकों को आवारा कुत्तों की गिनती करने के लिए लगाया गया है। उन्होंने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि अगर उनके पास कोई अधिकारिक आदेश या परिपत्र है तो उसे सार्वजनिक करे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी तहसीलदारों और सब रजिस्ट्रार के निलंबन को लेकर भी झूठ फैलाने का प्रयास कर रही है। श्री सूद ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होती है तो आम आदमी पार्टी को आपत्ति होती है।
कल झूठ बोला गया कि कुत्तों की गिनती के लिए टीचर्स को लगाया गया है। मैं चुनौती देता हूं आम आदमी पार्टी को, ऐसा कोई सर्कुलर हो तो तुरंत आम आदमी पार्टी उसको पब्लिक के सामने लाए। और जो तहसीलदार और एक सब रजिस्ट्रार की सस्पेंशन हुई है उस पर इसी प्रकार से झूठ बोलकर प्रशासनिक अराजकता पैदा करने की कोशिश की।
इस दौरान दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि 5 जनवरी से दिल्ली विधानसभा का 4 दिवसीय सत्र शुरू होगा। इस सत्र में पर्यावरण और प्रदूषण, शीश महल तथा दिल्ली जल बोर्ड की कार्य प्रणाली से जुड़े कैग की रिपोर्ट और उच्च शिक्षा में हुए भ्रष्टाचार पर विस्तार से चर्चा होगी।
4 निर्णय है। पहला, पॉल्यूशन के ऊपर सरकार खुद प्रस्ताव लेकर आ रही है और खुली चर्चा प्रदूषण और पर्यावरण के ऊपर किया जाएगा। सीएजी की 3 रिपोर्ट, एक शीश महल के भ्रष्टाचार के ऊपर, दिल्ली जल बोर्ड के 2022 तक के जो कार्रवाई थी उसमें क्या क्या घोटाले और अनियमितताएं हुई उसके ऊपर।
दिल्ली सरकार ने कहा कि राजधानी की जनता अब झूठ, भ्रम और दिखावे की राजनीति को समझ चुकी है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि शहर में रह रहे 6000 से अधिक गरीब परिवारों को अगले वर्ष से फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे। ये जानकारी आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि पहले चरण के अंतर्गत शहर के सावदा घेवरा कॉलोनी में 2500 गरीब परिवारों को फ्लैट आवंटित किए जाएंगे। ये सभी फ्लैट बिजली, पानी, शौचालय जैसी सुविधाओं से सुसज्जित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल गरीब परिवारों के लिए गरिमा के साथ जीवन जीने और सुरक्षित भविष्य की नींव है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली विद्युत बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये सुविधा निजी बिजली वितरण कंपनियों बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के अंतर्गत आने वाले पेंशनधारकों को दी जाएगी। दिल्ली ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि ये निर्णय सभी पेंशनधारकों को समान, न्यायपूर्ण और सम्मानजनक स्वास्थ्य सुविधा देने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 463 सूचीबद्ध अस्पताल और निदान केंद्र पेंशनधारकों को भी उपलब्ध कराए जाएंगे। श्री सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार पेंशनधारकों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य तथा कल्याण के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज अपने कार्यालय में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की 103वीं बटालियन से संवाद किया। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ के जवान साहस, अनुशासन और प्रतिबद्धता के प्रतीक हैं तथा देश की आंतरिक सुरक्षा की रीढ़ हैं। इस दौरान श्री गुप्ता ने उग्रवाद और आतंकवाद विरोधी अभियानों तथा आपदा प्रबंधन में सीआरपीएफ की भूमिका की सराहना की। इस अवसर पर अध्यक्ष ने स्मृति चिन्ह के रूप में दिल्ली विधानसभा प्रस्तुत करती है शताब्दी यात्रा वीर विट्ठल भाई पटेल शीर्षक से प्रकाशित एक कॉफी टेबल बुक भी उन्हें भेंट की। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने आज अनुसूचित जाति और जनजाति बस्तियों के विकास से जुड़े कार्यों की स्वीकृति को लेकर समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि इस बैठक का उद्देश्य हर बस्ती में मूलभूत सुविधाएं, सम्मानजनक जीवन और समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय और जनकल्याण दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है। दिल्ली के नांगलोई में जल संग्रहण संयंत्र के मरम्मत कार्य के कारण 3 से 12 जनवरी तक जलापूर्ति कम दबाव या कम समय के लिए उपलब्ध होगी। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार नांगलोई, पश्चिम विहार, मुंडका और आसपास की कॉलोनियां प्रभावित रहेंगी। बोर्ड ने इस दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी इकट्ठा कर रखने को कहा है। दिल्ली जल बोर्ड ने शहरवासियों से किसी भी आपात स्थिति के लिए बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर 1916 पर भी संपर्क करने की सलाह दी है। दिल्ली लोक निर्माण विभाग द्वारा जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने का काम लगातार किया जा रहा है। विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि आदर्श नगर के 66 फुटा रोड, देवकी नंदन मार्ग और गायला डेयरी क्षेत्र में नालों से गाद निकालने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इस पहल से जलभराव की समस्या का समाधान किया जा सकेगा, साथ ही स्वच्छता और सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नीति आयोग में प्रमुख अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों से बातचीत की और केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए सुझाव लिए। ये बैठक देश की आर्थिक स्थिति और भविष्य की प्राथमिकताओं के बारे में विचार और आकलन साझा करने का माध्यम बनेगी। बैठक में उन क्षेत्रों के बारे में प्रमुखता से विचार विमर्श हुआ जिनमें अर्थव्यवस्था को मजबूती और विकास को गति देने तथा उभरती चुनौतियों के समाधान के लिए सुधार जरूरी है। नीति आयोग द्वारा आयोजित इस संवाद से आर्थिक आयोजना के अगले चरण की तैयारी के लिए सरकार को बहुमूल्य सुझाव मिलेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम और वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रिफॉर्म एक्सप्रेस 2025 को लेकर एक लेख साझा किया। इसमें शासन के उन संचयी कार्यों पर प्रकाश डाला गया है जिन्होंने धीरे धीरे बाधाओं को दूर किया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की एक पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि श्रम कानूनों और व्यापार समझौते से लेकर रसद ऊर्जा बाजार सुधारों तक देश की विकास गाथा विश्वसनीयता, स्थिरता और दीर्घकालिक विश्वास पर आधारित है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने वर्तमान वर्ष 2025 को जीवन सुगमता और कार्य सुगमता सुनिश्चित करने के लिए लागू शासन सुधारों को समर्पित किया है। आज नई दिल्ली में वर्षांत संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने मंत्रालय की प्रमुख पहल और उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हाल के प्रयास न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के सिद्धांत के तहत किए गए। डॉ सिंह ने कहा कि सरकार को जन केंद्रित बनाने के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाने, लंबित मामलों में कमी लाने और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर ध्यान दिया गया है।
ये वर्ष सुशासन सुधारों को समर्पित रहा है जिसका उद्देश्य नागरिकों के लिए जीवन को सुगम बनाना है। जब हम जीवन सुगमता की बात करते हैं तो ये भी उतना ही आवश्यक है कि सेवाएं प्रदान करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कार्य सुगमता भी सुनिश्चित हो। इसी सोच के तहत मंत्रालयों और कार्यालयों में कार्य अनुकूल वातावरण विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये मूल भावना उस लक्ष्य को साकार बनाना है जिसकी नींव शुरुआत में ही रखी गई थी।
एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2026 आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। अगले वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 2400 से अधिक राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी कैडेट भाग लेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रतिभागियों की संख्या अब तक की सबसे अधिक है।
युवा विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत इस वर्ष 25 मित्र देशों के कैडेट और अधिकारी भी समारोह में भाग लेंगे। सर्वधर्म पूजा से शुरू होने वाला यह एक महीने का शिविर अंतर निदेशालय प्रतियोगिताओं और सर्वश्रेष्ठ कैडेट प्रतियोगिता, लघु शस्त्र फायरिंग और कर्तव्य पथ पर परेड के दौरान मार्चिंग दल जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। इस अवसर पर एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने कैडेटों का स्वागत करते हुए गणतंत्र दिवस शिविर के लिए चयन पर बधाई दी। श्री वत्स ने कैडेटों से राष्ट्र सर्वोपरि की सच्ची भावना में धर्म, भाषा और जाति की बाधाओं को पार करने का भी आग्रह किया। प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने रोगों के समुचित उपचार की दवाओं का तेजी से पता लगाने के लिए पैथोजेनी नामक एक नया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है। मंत्रालय ने बताया कि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर संभावित दवाओं के आकलन और चयन प्रक्रिया में तेजी लाएगा जिससे लागत कम होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए लगातार और एक साथ कई मोर्चों पर ठोस कार्रवाई कर रही है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि चरणबद्ध कार्रवाई योजना ग्रैप के हटते ही राजधानी में लगभग 400 किलोमीटर सड़कों का निर्माण युद्ध स्तर पर शुरू किया जाएगा। इनमें से 300 किलोमीटर सड़कों के लिए केंद्र सरकार ने बजट जारी कर दिया है, वहीं शेष सड़कों का निर्माण दिल्ली सरकार करेगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण को लेकर सभी निविदा प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का स्पष्ट उद्देश्य विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाते हुए दिल्ली वासियों को सुरक्षित तथा स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना है। नववर्ष 2026 के आगमन को लेकर दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं। राजधानी में नए वर्ष पर सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नागरिक बिना किसी परेशानी के नववर्ष का स्वागत कर सके, इसके लिए दिल्ली यातायात पुलिस ने खास दिशा निर्देश भी जारी किए हैं।
नववर्ष के अवसर पर कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और इनके आसपास के क्षेत्रों में कल शाम 7 बजे से वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। यातायात पुलिस की अतिरिक्त आयुक्त मोनिका भारद्वाज ने बताया कि इन क्षेत्रों में भारी भीड़ और समारोह होने के कारण केवल वैध पास वाले वाहनों को ही अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी।
कनॉट प्लेस के जो तीनों सर्कल्स हैं उन पे शाम को 7 बजे के बाद गाड़ियां अलाउड नहीं होंगी और जिन व्हीकल्स के पास वैलिड पासेस हैं सिर्फ वही लोग वहाँ गाड़ी लेके जा सकते हैं।
इसके अलावा प्रभावित इलाकों में रंजीत सिंह फ्लाईओवर, मंडी हाउस, बंगाली मार्केट, पटेल चौक, गोल मार्केट, विंडसर प्लेस, आरके आश्रम मार्ग और चित्रगुप्ता मार्ग क्रॉसिंग आदि स्थान शामिल हैं। वहीं पार्किंग के लिए कन्नौट प्लेस के बाहर कालीबाड़ी मार्ग, पंडित पंत मार्ग, भाई वीर सिंह मार्ग, रोहिणी मार्ग, विंडसर प्लेस पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होंगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने दिल्ली रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए यात्रियों से वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करने की सलाह दी है। पुलिस ने सभी वाहन चालकों और नागरिकों से धैर्य बनाए रखने, सड़क पर यातायात नियमों का पालन करने और मौके पर तैनात यातायात कर्मियों के निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। इसके अलावा पुलिस ने यातायात से जुड़ी सहायता या जानकारी के लिए दिल्ली यातायात पुलिस की वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर 1095 और 011-258-44444 तथा व्हाट्सएप सहायता के लिए 8750-871-493 का उपयोग करने की भी सलाह दी है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
देश के उत्तरी भागों में घने कोहरे से आज रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ। दिल्ली आने वाली 20 से अधिक रेलगाड़ी 3 घंटे से अधिक देरी से चल रही हैं। खराब मौसम के कारण हवाई यात्रा भी प्रभावित हुई है। घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण आज 118 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में यात्रियों से आग्रह किया है कि वे अपनी उड़ान की स्थिति की नियमित रूप से जांच करें और संबंधित एयरलाइनों के संपर्क में रहें। मंत्रालय ने एयरलाइनों को यात्रियों की सुविधा के लिए निर्धारित सभी नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। इनमें समय पर उड़ान की जानकारी, उड़ान सेवा में देरी वाले यात्रियों के लिए भोजन, रद्द होने की स्थिति में पुनर्बुकिंग या धन वापसी और शिकायतों का शीघ्र निवारण शामिल हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से 2 मोबाइल फोन और 3 सिम कार्ड बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार इस गिरोह ने दिल्ली एनसीआर में एक पीड़िता को व्हाट्सएप के जरिए निवेश का झांसा देकर 22 लाख रुपए से अधिक की ठगी की। इस मामले में आगे जांच जारी है। राजधानी में आज सुबह के समय सामान्य से अधिक ठंड महसूस की गई, वहीं दिन में धूप खिली थी। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। विभाग के अनुसार कल सुबह कोहरा छाए रहने की संभावना है, वहीं कल का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शाम 7 बजे तक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 375 दर्ज किया गया, जो वायु की बहुत खराब स्थिति को दर्शाता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 जनवरी से पर्यावरण और प्रदूषण पर होगी विशेष चर्चा। दिल्ली सरकार आर्थिक रूप से कमजोर 6000 से अधिक परिवारों को अगले वर्ष तक मकान उपलब्ध कराएगी। दिल्ली सरकार ने दिल्ली विद्युत बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। दिल्ली में नए वर्ष पर सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रबंध किए गए और राष्ट्रीय कैडेट कोर का गणतंत्र दिवस शिविर 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।